प्रश्न एक, साहित्य का स्वरूप। साहित्य का उदय। संसार और हम। इस संसार में जन्म लेते ही शिशु रोने लगता है, यह उसके संसार के प्रति पहली प्रतिक्रिया है। वह स्तन्यपान करता है और धीरे धीरे अपनी माता को पहचानने लगता है। उसकी गोद में उसे सुख मिलता है। चारपाई पर लेटा देने से वह रोने लगता है। रोना, हाथ पैर फेंकना या मुस्कुराना उसके सुख दुख की अभिव्यक्तियाँ हैं। संसार के प्रति हमारी कुछ न कुछ प्रतिक्रिया होती है। पहले हमको उसका ज्ञान होता है और फिर उसके प्रति हमारा आकर्षण या विकर्षण। हम विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त करने का यत्न करते हैं। हम किसी सुरम्य उपवन में पहुंच जाते हैं। शुभ्र हास्यमयी सद्य विकसित कलिकाओं के सौरभमय सौंदर्य का नेत्र और नासिका द्वारा हमें ज्ञान होता है। उस ज्ञान के साथ ही हमारा मन आंदोलित होने लगता है। हम कहने लगते हैं, कैसा सुरम्य दृश्य है। इच्छा होती है यहीं बैठे रहे और सामने पड़ी बेंच पर बैठकर कुछ गुनगुनाने लगते हैं। आधारभूत मनोवृत्तियाँ। उपर्युक्त अनुभव में हमको तीन प्रकार की मनोवृत्तियों का परिचय मिलता है। हमको ज्ञान मिलता है। ज्ञान के साथ हमारे भाव लगे होते हैं, जैसे मित्र को देखकर प्रसन्न होना, शत्रु या अत्याचारी को देखकर दुखी होना या किसी अद्भुत बात को देखकर आश्चर्यान्वित होना। हमारे भाव हमारे मस्तिष्क की चार दीवारी में बंद नहीं रहते। हम भावों के अनुकूल क्रिया करने लग जाते हैं। मित्र को देखकर उसके स्वागत को उठ खड़े होते हैं। शत्रु को देखकर उससे दूर भागने अथवा उसे दूर भगाने की कोशिश करते हैं। इन मनोवृत्तियों का ज्ञान, भावना और संकल्प जो क्रिया का मूल है कहते हैं। ये तीनों मनोवृत्तियों कबूतर खाने की भांति अलग अलग कक्षों में नहीं रहते। जिस समय प्रधानता होती है उसी के अनुकूल उनका नाम रख लिया जाता है। ये रहती तो हमारे मन में है, किंतु बाह्य संसार के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में जागृत होती है। यद्यपि हमारा ज्ञान भी अभिव्यक्ति पृष्ठ 10 चाहता है और उसका भी परिणाम किसी प्रकार की क्रिया में होता है, तथापि भावों में शाब्दिक अभिव्यक्ति और क्रिया की जितनी प्रबल प्रेरणा होती है उतनी और किसी में नहीं। वास्तव में हमारी भावनाएं ज्ञान को एक प्रकार की रंगत देकर हमको क्रिया के लिए प्रेरणा देती हैं। इसलिए हमारे यहाँ के विश्लेषण में इन्हें ज्ञान, इच्छा और क्रिया का नाम दिया गया है। इच्छा में भावना और क्रिया का मिश्रण रहता है। इच्छा के बाद ही संकल्प आता है, इसमें क्रिया की ओर अधिक प्रवृत्ति होती है। ज्ञान भक्ति और कर्मयोग का मार्ग ज्ञान, भावना और संकल्प की मनोवृत्तियों पर आश्रित है। अतः साहित्यिक व्याख्या के लिए हम ज्ञान, भावना और संकल्प के ही विभाजन को मुख्यता देंगे। आत्माभिव्यक्ति और साहित्य। इन मनोवृत्तियों के साथ हमारी कुछ प्रवृत्तियाँ भी हैं। भय के समय भागने की प्रवृत्ति, क्रोध में लड़ने की प्रवृत्ति। इसी प्रकार हम में एक आत्माभिव्यक्ति की भी प्रवृत्ति है, अर्थात हम अपने भावों को प्रकाशित किए बिना नहीं रह सकते। हम सिनेमा देखकर आते हैं, उसकी तारीफ या बुराई करने की हमारी प्रबल इच्छा होती है, यही आत्माभिव्यक्ति है। हम संघर्ष से हंसने, गाने और नाचने लगते हैं, विषाद में सिर नीचा करके पड़ जाते हैं और रोने भी लगते हैं, यही अभिव्यक्ति अभी अर्थात अच्छी तरह व्यक्ति अर्थात प्रकट करना है। क्रिया भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति है। यदि हम किसी को पीटते हैं तो हमारे क्रोध की अभिव्यक्ति होती है। इन अभिव्यक्तियों में जो शाब्दिक अभिव्यक्ति होती है उसका विशेष महत्व है, कारण उसका अधिक स्थायित्व और उससे सामाजिकता भी अधिक है। मनुष्य की आत्माभिव्यक्ति में ही उसकी सामाजिकता का मूल है। साहित्य में भी इसी अभिव्यक्ति की प्रधानता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि साहित्य संसार के प्रति हमारी मानसिक प्रतिक्रिया अर्थात विचारों, भावों और संकल्पों की शाब्दिक अभिव्यक्ति है और वह हमारे किसी न किसी प्रकार के हित का साधन करने के कारण संरक्षणीय हो जाती है। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति भी इस परिभाषा को पुष्ट करती है। साहित्य शब्द का अर्थ है सहित होने का भाव, सहितस्य भाव साहित्यम। अब प्रश्न होता है कि सहित शब्द का क्या अर्थ है। सहित शब्द के दो अर्थ हैं, एक सह अर्थात साथ होना और दूसरा हितेन सह सहितम अर्थात हित के साथ होना अथवा जिससे हित संपादन हो। सह अर्थात साथ होने के भाव को प्रधानता देते हुए हम कहेंगे कि जहाँ शब्द और अर्थ विचार और भाव का परस्परानुकूलता के साथ सभाव हो वही साहित्य है। शब्द और अर्थ का सहित होना स्वाभाविक रूप से माना गया है। कवि कुल चूड़ामणि कालिदास अपने रघुवंश के मंगलाचरण में शब्द और अर्थ के संयोग को अपने इष्ट और उपास्य पार्वती परमेश्वर के संयोग का उपमान माना है। एक गोस्वामी जी ने अभी अपनी वाणी और अर्थ का संबंध जल और उसकी तरंग पृष्ठ 11 के भांति एक दूसरे से भिन्न और अभिन्न दोनों ही माना है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद चिन्हे सदा प्रिय खिन्न रामचित मानस बालकांड। इस प्रकार स्वभाव में ही साहित्य का भाव लगा हुआ है। साहित्य का अर्थ हितेन सहितम लगाते हुए हम कहेंगे कि साहित्य वही है जिससे मानव हित का संपादन हो। हित उसे ही कहते हैं जिससे कुछ बने, कुछ लाभ हो। विदधात तीतई हितम आनंद भी एक लाभ है, रुपए आने पाए का ही लाभ नहीं है। विधाता में भी हित का भाव है। हमारी परिभाषा में सहित होने का और हित होने का भाव है। अंग्रेजी शब्द लिटरेचर अक्षरों में से बना है। अक्षरों में का जितना विस्तार है वह सब लिटरेचर है। अरबी में साहित्य को अदब कहते हैं। अदब का अर्थ है आदर शिष्टता। साहित्य शिष्टता पूर्ण होने के कारण ही अदब कहलाता है। व्यापक और संकुचित अर्थ साहित्य शब्द के इन अर्थों पर विचार करने से हम इस धारणा पर पहुंचे हैं कि उसके व्यापक और संकुचित दोनों ही अर्थ होते हैं। व्यापक अर्थ में साहित्य सारे वांग्मय का पर्याय है। जितना शब्द भंडार और वाणी का विस्तार है सब इसके अंतर्गत आ जाता है। पंचांग त्रिकोण में से बीमा कंपनी का प्रोस्पेक्टस और दवाइयों के विज्ञापन से लगाकर रघुवंश मेघदूत तुलसीकृत रामायण साकेत कामायनी गोदान चिंतामणि आदि सभी गद्य पद्यात्मक पुस्तकें आ जाती हैं। प्राय लोग कहते हैं दार्शनिक साहित्य वैज्ञानिक साहित्य बीमा कंपनी और दवाइयों के एजेंट भी कहते सुनने जाते हैं। इसमें यदि आपकी अभिरुचि हो तो इसके संबंध का कुछ लिटरेचर या साहित्य हम आपकी सेवा में भेज दें। साहित्य अपने संकुचित और रूढ़ अर्थ में काव्य का पर्याय बन जाता है। साहित्य और विज्ञान में जो भेद किया जाता है वह इसी रूढ़ अर्थ के आधार पर। साहित्य का व्यापक अर्थ उसकी व्युत्पत्ति के अर्थ पर आश्रित है और संकुचित अर्थ रूढ़ी पर अवलंबित है। व्यापक अर्थ में साहित्य ऐसी शाब्दिक रचना मात्र का वाचक है जिसमें कुछ हित या प्रयोजन हो और अपने रूढ़ अर्थ में काव्य का भाव काव्य व भावना प्रधान साहित्य का पर्याय है। इस प्रकार व्यापक अर्थ में साहित्य के दो विभाग हो जाते हैं, एक काव्य और दूसरा शास्त्र। काव्य रसात्मक होता है और शास्त्र ज्ञान प्रधान। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम डिक्वेंसी ने भी ऐसा ही विभाग किया है। लिटरेचर ऑफ नॉलेज यह अपने यहाँ का शास्त्र है और लिटरेचर ऑफ पावर यह अपने यहाँ का काव्य है। पहले का उद्देश्य सिखाना है, दूसरे का उद्देश्य प्रभावित करना है। द फंक्शन ऑफ द फर्स्ट इज टू टीच, द फंक्शन ऑफ द सेकेंड इज टू मूव टू। पृष्ठ 12 प्रारंभिक साहित्य। साहित्य मौखिक और लिखित दोनों ही रूप में हो सकता है। आरंभिक काल में साहित्य मौखिक ही रहा होता होगा और इसके बाद में वह लिखित रूप में आया। आदि मनुष्य प्राकृतिक दृश्यों से भयभीत होकर अनिष्ट निवारणार्थ ईश्वर देवताओं या प्राकृतिक शक्तियों से प्रार्थना करता होगा और उसी ने साहित्य का रूप धारण कर लिया होगा। भाषा की उत्पत्ति भी आत्मव्यक्ति के रूप में हुई होगी। आदि मनुष्य ने अपने आकर्षण और विकर्षण की वस्तुओं के संबंध में क्रियात्मक अभिव्यक्ति के साथ कुछ शाब्दिक अभिव्यक्ति भी की होगी। वह चाहे कितनी ही अस्पष्ट क्यों न हो धीरे धीरे वह अभिव्यक्ति निश्चित होती गई और भाषा का रूप धारण करती गई। किंतु मनुष्य की सभी अभिव्यक्तियां संरक्षणीय नहीं होती। जो संरक्षणीय होती हैं वे ही साहित्य का रूप धारण कर लेती हैं। वे ही अभिव्यक्तियां संरक्षणीय होती हैं जिनके द्वारा मानव समाज का हित हो अथवा जो मनुष्य के आनंद का कारण बन सके। जहाँ हित और मनोहरता दोनों आ जाए वही सत साहित्य की सृष्टि हो जाती है। हितम मनोहारे च दुर्लभम वचन किरातार्जुनीय साहित्य इसी दुर्लभ को सुलभ बनाता है। भाषा मनुष्य की सामाजिकता को विशेष रूप से पुष्ट करती है। उसी के द्वारा मनुष्य समाज में सहकारिता उत्पन्न होती है और वह मनुष्य को उन्नत बनाती है। साहित्य मनुष्य जाति के सामाजिक संबंधों को और भी दृढ़ बनाता है, क्योंकि उसमें मनुष्य जाति का सम्मिलित हित रहता है। सम्मिलित हित और आनंददायिनी शक्ति के कारण ही साहित्य संरक्षणीय बनता है। साधारण भाषा की अपेक्षा साहित्य की भाषा कुछ अधिक प्रभावशाली होती है और वह लेखक और कवि के भावों को समाज में प्रसारित करने में अधिक समर्थ होता है। लेखक या कवि अपने पाठक या श्रोता को अपने भावों का साझेदार बनाकर उसको भी अपने समान भाव विभोर या विचार मग्न करने का प्रयत्न करता है, किंतु लेखक और कवि के भाव और विचार सब उसके ही नहीं होते। वह प्रायः समाज का प्रतिनिधि होता है। उसके द्वारा सामाजिक जीवन स्वयं मुखरित हो उठता है। हमारी जीवन धारा की आनंदमयी अभिव्यक्ति ही तो साहित्य है।